नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया सम्मानित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार खो चुकी है बहुमत, सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। कांग्रेस का दावा, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद प्रदेश सरकार कर्मचारियों को दे रही वित्तीय लाभ। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी का दौर आज भी रहा जारी, कल से मौसम साफ होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। वयोवृद्ध नेता आडवाणी को उनके आवास पर ये सम्मान प्रदान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और आडवाणी के परिवार के सदस्य इस अवसर पर मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजनीति के शिखर व्यक्तित्व लाल कृष्ण आडवाणी ने दृढ़ समर्पण और असाधारण कौशल के साथ 7 दशकों से भी अधिक समय तक देश की सेवा की। राष्ट्रपति ने कहा कि आडवाणी आजादी के बाद के उन नेताओं में से थे जिन्होंने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सामने रखकर देश को विकास पथ पर अग्रसर किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से उनके निवास पर मुलाकात की और आगामी चुनावों के संबंध में उनसे विस्तृत चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। हाल ही में अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, आशीष शर्मा और कुटलेहर से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो भी इस दौरान उनके साथ थे। बाद में हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार बहुमत खो चुकी है और उसे सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटकर अपनी सरकार बचाई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट सत्र के दौरान भाजपा के 15 विधायकों को गलत तरीके से निष्कासित नहीं किया जाता तो कांग्रेस की सरकार सत्र के दौरान ही गिर गई होती। प्रदेश भाजपा ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न करने को असंवैधानिक करार दिया है। भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि विधायकों ने स्वेच्छा से व्यक्तिगत रूप से पेश होकर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दिया है और ऐसे में इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। 6 बागी विधायकों पर मुख्यमंत्री के जुबानी हमले को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 महीने के कार्यकाल में अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते इन विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए कार्य किया है, जिसके चलते देश भर में लोग और नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में ही कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं। शिमला से जारी एक बयान में दोनों नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए 1,36,000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन प्रदान करने पर केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई और केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता को भी कम किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार से मिले कर्ज के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बावजूद वर्तमान राज्य सरकार आर्थिक बदहाली को ठीक करने के साथ साथ कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ भी प्रदान कर रही है। वहीं दूसरी ओर विधायक हरीश जनार्था और सुरेश कुमार ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 बागियों ने न केवल पार्टी के साथ दगाबाजी की है बल्कि अपने चुनाव क्षेत्र की जनता की भावनाओं का भी अपमान किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मात्र 1.25 साल पहले ये सभी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए मतदाताओं ने इन्हें विजयी बनाया, लेकिन निजी स्वार्थ के चलते अब इन्होंने जनता पर उपचुनाव का अनावश्यक बोझ थोप दिया है। उन्होंने कहा कि जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और उपचुनाव में सभी 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। ईस्टर का पर्व आज हर्षोल्लास से मनाया गया। मान्यता है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद प्रभु यीशु आज ही के दिन पुनर्जीवित हो गए थे। कल रात देश के विभिन्न गिरजाघरों में मध्य रात्रि ईस्टर प्रार्थना आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर पर भारत और विदेश में रहने वाले नागरिकों विशेषकर ईसाई समुदाय को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रेम और करुणा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मानव जाति के बीच एकता और शांति की कामना की। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति से प्री सर्टिफिकेशन करवाना आवश्यक है। मंडी के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि बिना प्री सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन केबल नेटवर्क, ई पेपर, टीवी, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में जारी नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मीडिया कर्मियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि वे बिना प्री सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन प्रकाशित न करें। इसके अतिरिक्त सरोगेट विज्ञापन का भी प्रकाशन न करें। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी द्वारा सभी समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, ई पेपर, सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रदेश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिदेशालय शिमला से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद 2 सप्ताह के भीतर 1,20,00,000 रुपए से अधिक की अवैध शराब और मादक पदार्थों को जब्त किया गया है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत 80 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच लाइसेंसी हथियारों को जमा करवाने के लिए भी सभी जिलों में अभियान चलाया गया है, जिसके तहत कुल 1,403 हथियारों में से अब तक 36,587 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले इलाकों में आज रुक रुक कर वर्षा होती रही। लाहौल स्पीति जिला के केलम में 6 इंच जबकि कोकसर, सिस्सु और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर करीब 10 इंच तक ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे मनाली केलंग सहित घाटी के अंदरूनी मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1.5 से 2 फुट तक हिमपात होने से घाटी में हिमखंड खिसकने का खतरा बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। जनजातीय जिला किन्नौर के ऐतिहासिक गांव कल्पा में चल रहे राहुलानी पर्व में किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने आज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति पर किस तरह गर्व करना है, किन्नौर के लोग ये बात पूरी दुनिया को सिखा सकते हैं। इस पर्व में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में पुरुष महिलाओं की वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य करते हैं। इस बार इस पर्व को देखने देश व विदेश से काफी पर्यटक आए हैं। इस बीच मंडी जिले के जोगिंदरनगर का राज्य स्तरीय लघु शिवरात्रि मेला कल देवताओं की भव्य जलेब के साथ शुरू होगा। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे। मेला समिति के अध्यक्ष व एसडीएम जोगिंदरनगर मनीष चौधरी ने बताया कि शिवरात्रि मेले को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बार लगभग 100 से अधिक देवी देवताओं को मेले में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहली सांस्कृतिक संध्या में नितिन शर्मा, गौरव कौंडल व पहाड़ी गायक किशन वर्मा व राजेंद्र वर्मा भी लोगों का मनोरंजन करेंगे। इसके अलावा स्थानीय व प्रदेश के अन्य कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने बताया कि मेले के पहले दिन रन फॉर डेमोक्रेसी थीम पर मैराथन और मतदाता जागरूकता पर आधारित महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया सम्मानित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार खो चुकी है बहुमत, सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। कांग्रेस का दावा, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद प्रदेश सरकार कर्मचारियों को दे रही वित्तीय लाभ और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी का दौर आज भी रहा जारी, कल से मौसम साफ होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।